गिरधारी श्याम सुंदर राज बिहारी मेरे हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। किंतु इसमें भी विलंब लग सकता है। यदि अत्यंत उत्कंठा हो तुरंत मिले उतनी भी देर न लगे, तो कृष्ण की कृपा से जो होगा उससे भी अधिक एक और व्यक्ति है जिसकी कृपा से और जल्दी से वो मिलेंगे। वो क्या है? बस राधा जी के शरण में। ये वेद गुह्य, उपनिषद गुह्य, शास्त्र गुह्य, ये चीजें हैं। बहुत गोपनीय रूप में श्रीमद् भागवत अपनी पेटिका में बंद करके ये रखा है। ये सर्वसाधारण है। ये बहुत उच्च कोटि के भक्त लोग कृष्ण को भी छोड़ करके उनकी प्रियतमा राधा जी का शरण ग्रहण करते। क्यों? कृष्ण यदि जाएंगे भी तो राधा जी चुटकी बजाते ही लौट आएंगे। कृष्ण प्रसन्न भी हो, राधा जी प्रसन्न होने से कृष्ण को प्रसन्न करने में चुटकी भी नहीं लगी। इसलिए क्या करें? वृंदावन में, राधा कुंड में, कुंज गलियों में, सर्वत्र क्या करूं? राधा राधा रटूं। हाँ, जरा राधा जी को रटाइए तो याद है।
राधा राधा नाम ब्रज की गलियां में,
ये सब कुछ निहित महामंत्र हरे कृष्ण में है। जो कुछ भावना बतलाया, हरे माने ऐसे जो श्याम सुंदर हैं उनके भी चित्त को हरण करने वाली कौन है? राधा जी का ही नाम कृष्णा है ना? कृष्णा उन्हीं को कहते हैं, रमा भी उन्हीं को कहते हैं, है? गौण नाम। जैसे कृष्ण का मुख्य नाम राम है और दशरथ पुत्र राम एक ही तत्व होने पर भी ये गौण है। बलदेव जी का नाम जो राम है वो गौण है, ये कृष्ण के नाम है, सब पर तत्व है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु मत्तः परतरम नन्नत किंचिदस्ति धनंजय, गीता में कहते हैं, उपनिषदों में भी कहते हैं ऐसे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, सर्वत्र ही ऐसा ही। वेणु कणंतम अरविंद दलायक साक्षम इत्यादि में भी ऐसा ही कहा गया, सर्वत्र ऐसा। वो क्या है? चिंता चिंतामणि प्रकर सदमा सुकल्प वीक्षा लक्षावते सुरभिरभि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत शब्द सभ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम, सर्वत्र एक ही बात है। इसलिए महामंत्र के द्वारा कृष्ण की उपासना कलयुग का परम धर्म है। यहां पर एक बात आती है, अब थोड़ा सा दार्शनिक विचार थोड़ा सा 5 मिनट प्रस्तुत करें। मधु चखने के बाद में लोभ तो दिया किंतु मधु को पाएंगे कैसे? उसके लिए दुकान पर जाना पड़ेगा, कुछ पॉकेट गर्म करके जाना पड़ेगा, मधु खरीदना है। ये पॉकेट को गर्म करना माने श्रद्धा है, इसको लेकर के चलना। आप गए साग के मार्केट में जहां पर साग मिल रहा था और वहां पर आप सोने का सुंदर हार नौलखा खोज रहे हो तो साग की दुकान में मिलेगा? तो लोहे की दुकान पर सोना मिलेगा कि नहीं? ठीक ठीक दुकान पर जाइए, दूसरी दुकानों में जाने से नहीं होगा। ये जगत बहुत बड़ा बाजार है, इसमें तरह तरह की दुकानें हैं। इसमें कर्मी लोग दुकान लगाए हैं, ज्ञानी लोग लगाए हैं, ज्ञान योगी लोग लगाए हैं, भक्ति योगी लगाए हैं, भाव भक्त लोगों की दुकानें हैं, प्रेमी भक्त लोगों की दुकानें हैं, स्नेह राग अनुराग भाव महाभाव की भी दुकान है। जिसका जैसा सौभाग्य है उसी के अनुरूप में अपने पॉकेट को देखते हुए यदि आप स्वर्ण अलंकार के पास में जा रहे हैं, वहाँ पर सोने का अलंकार लेना है, आपके पॉकेट में 100 पैसा है, 1 रुपया 1 टका है, वहाँ पर खरीद सकते हैं कुछ? जाकर के आंखें झिलमिला जाएंगी, दाम भी पूछने का साहस नहीं होगा, वहाँ से लौट आएंगे बैरंग। बैरंग जानते हैं ना, बैरंग चिट्ठिया जो जाती है लौट करके कैसे आती, ऐसे ही बैरंग लौटना, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बहुत दुकान है। हमने कल तक वो जो आरंभ किया था कर्म, कर्म योगी, इसके बाद में ज्ञान, ज्ञान योगी। ज्ञान और ज्ञान योगी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। ज्ञानी कौन है, मैंने कल व्याख्या की थी, क्या ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण जन्म और मृत्यु से तनिक भी कोई घबराता नहीं, एक समान समझता है, आत्मा अजर अमर है, उसको कोई क्लेश नहीं है। ऐसा जिसको अनुभूति हो जाए उसको कहते हैं ब्रह्मभूत, जिसको प्यास भूख मान अपवाद तनिक भी दिगा नहीं सकते, ये ब्रह्मभूत है। और दूसरे लक्षण भी है, क्या ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, सब समय प्रसन्न रहता है, दुख उसके निकट फटक नहीं पाता, संसार का सभी कुछ उसके लिए सुखमय होता है, उसके लिए दुख नाम की कोई चीज नहीं है, किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, किसी चीज की विश्व ब्रह्मांड के किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं है, केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है या ज्ञान की जरूरत है, वो भी निष्काम करता है, दूसरों के शिक्षा के लिए कुछ कर सकता है, उसकी यदि कुछ संपत्ति भी है वो भी यदि चली जाए तो उसके लिए शोक नहीं करता, किसी चीज के लिए। ऐसा व्यक्ति यदि साधुओं का संग मिल जाए तो क्या होगा, पराभक्ति को लाभ करता है, लभते पराम भक्ति लभते पराम, वो पराभक्ति को लाभ करता है। ऐसा व्यक्ति हो और साधुओं का संग हो जाए तो सनत सनंदन सनत कुमार निराकारवादी थे, निर्विकार निर्गुण निरंजन अव्यक्त अनादि निशक्ति निर्गुण, इसके उपासक, उनके ब्रह्म का कोई रूप नहीं था, घटघट में व्यापी उनका ब्रह्म है, सर्व अंतर्यामी है, किंतु उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसकी कोई शक्ति नहीं है, उसमें दया इत्यादि भी नहीं है, जब गुण ही नहीं है तो क्या दया कहाँ रही, तो निर्दोष निष्ठुर, और जिसको कोई रूप नहीं है दया नहीं कर सकता, कोई सफेद काला कोई रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, निर्गुण ही है, निराकार है, निरंजन है, उसकी उपासना करके क्या होगा, उसका चित्त कभी तो द्रवित होगा नहीं, चित्त ही नहीं है तो द्रवित होने का प्रश्न तो अलग है, जिसको ये चीजें हैं वो तो द्रवित होगा, चित्त उसके बाद चल याद दया रहेगी, तो दया रहित व्यक्ति से हमको क्या जरूरत है, यदि विश्व ब्रह्मांड का संचालक भी है तो। अब इस पर हम थोड़ा सा विचार करें, आज 10 मिनट विचार करेंगे, बहुत से लोगों का ये विचार है, वो जो परब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है, उसका जन्म नहीं है, मरण नहीं है, किसी चीज से दुखों से अभिभूत नहीं होता, यदि जन्म होगा तो मरण भी होगा जरूर, यदि आकार होगा तो अंत में उसको भी मरना पड़ेगा, तो ब्रह्म का भी आकार मान लिया जाए तो एक दिन उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, जब सुख हो रहा है तो दुख भी होगा, इसलिए पर ब्रह्म ही से अतीत है। यदि शरीर रहेगा तो ताप लगेगा, ठंडा लगेगा, गर्म लगेगी, गर्मी लगेगी, मान अपमान भी उसको होगा, इसलिए ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। ठीक है, बातें तो ठीक कहते हैं आप, थोड़ा सा विचार कर लीजिए, ये जो निर्गुण शब्द है, निराकार है, इसमें आकार और गुण को हटा दीजिए तो क्या रह गया, निराकार है ना, उसमें से आकार को हटाइए, निराकार की कोई सत्ता ही नहीं रहेगी यदि आकार नहीं मानते हैं, निर्गुण में से केवल गुण को हटा दीजिए दो अक्षर को तो क्या कहेगा, क्या कुछ नहीं, इसको उपाधि कहते हैं। उपाधि किसको कहते हैं? बीमारी होने पर जो लक्षण होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को नाक से पानी गिर रहा है, सिर बहुत भार है, थोड़ा थोड़ा उसको बुखार है, तो ये बताइए तो कौन सा रोग है? सर्दी जुकाम कहते हैं इसको, ये सर्दी जुकाम है। शरीर से खूब बलगम आ रहा है, बीच बीच में रक्त की बूमी होती है, रक्त निकलता है, दिन रात एकदम क्षीण और दुर्बल होता जाता है। अच्छा, ये कौन सा रोग है ना? खैरो, ये सब लक्षण उपाधियां हैं। उपाधि से किसी रोग को निर्णय करते हैं। तो केवल यदि निर हो जाएगा, केवल निर रहा ना, निर्गुण, निराकार, निरंजन, अव्यक्त, ये सब रहेंगे, ये उपाधियां हैं। उपाधियों को हटा दीजिए तो नि को हटा दिए तो कह रहा गया क्या? गुण, आकार, ये मौलिक शब्द हैं। इसी को लेकर के वो बनता है। किस लिए बनाया गया? जब आंखों से उस चीज को नहीं देख पाते तो इसको कहा गया निर्गुण, निराकार, निरंजन। और जब उसका दर्शन हो जाता है तब वो वही सगुण है। निर्गुण और सगुण दोनों एक चीज है। इस चीज को समझने की चेष्टा करें। कृष्ण, राम इत्यादि भगवत तत्व हैं, ये सब सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण। निर्गुण कैसे? निर्गता गुणा, प्राकृता गुणा, जस्मात इति निर्गुणा, इसकी व्युत्पत्ति अर्थ है। प्राकृत गुण जिनमें नहीं है किंतु असंख्य प्राकृत गुण हैं, परम दयालु हैं, ऐत की कृपा काली करने वाले हैं, परम शक्तिशाली हैं, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है, अद्भुत ज्ञानी है, ज्ञान संपूर्ण रूप में उनमें है, इसलिए असंख्य अपराकृत उनमें गुण है, इसी को निर्गुण कहते हैं। एक विचार और विचार करें थोड़ा सा, ये जगत कहाँ से आया? कोई कहते हैं शून्य से प्रकट हुआ, शून्य में मिल गया, अभी भी शून्य है। कहाँ शून्य है? ये सूर्य और चंद्र शब्द हम देख रहे हैं, हम जगत में आ रहे हैं, कृष्ण का इसी में अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, हमारे माता पिता भाई बंधु सब शून्य है, जीरो है, जीरो तो कुछ नहीं। ये कौन कहते हैं जैसे ये शून्य से जगत हुआ, अभी भी शून्य है और अंत में शून्य मिल जाएगा? जब शून्य है तो शून्य में मिलने की क्या जरूरत है? तो शून्य ही है, आया कहां से? इसलिए शून्य से ये जगत नहीं हुआ है, हमारा परम तत्व तो शून्य नहीं है। इसलिए वहां पर कहा गया श्रुतियों में क्या कहा गया? पूर्णम मदह पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवश्य। वो पूर्ण है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। असंख्य में के कोई भी संख्या, यहां तक कि असंख्य भी निकालने तो कितना रह जाएगा? वो पूर्ण ही रहेगा। जीरो में से कोई चीज क्या निकालेगा? शून्य में से कोई चीज निकल सकता है? वो तो शून्य, ये धारणा ही एकदम गलत है। इसलिए शून्य से कोई चीज पैदा नहीं हुआ है। जब पैदा हुआ शून्य से तब तो समझो कि शून्य नहीं है। इसी को कहते हैं सब कारणवाद। इसीलिए ये कहा गया, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया सतेव सम्न इदम आग्रह। कृष्ण वो परम तत्व है, वही नित्य है पहले से, और उन्हीं से ये जगत हुआ। हमारे बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, क्या अर्थ हुआ? आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन, जैसा वो है जैसा उसका रूप है वैसे ही। कहां दोनों में भेद है? हम कहते हैं जिसे जगत निकला है, जिसे वो पालित पोषित होता है, जिसमें समा जाता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। और गॉड में भी क्या होता है? जी माने जनरेटर, पैदा करने वाला, ओ माने ऑपरेटर, पालन करने वाला, डी माने एक ही तो हुआ ना, स्थिति स्थिति पर करने वाला। इसमें भी हमारे कुरान शरीफ में भी ऐसा लिखा है, इन्ना लहा खलाका मैन सूरत ही, मैन सूरत ही इन्ना लहा, जो खुदा बख्श है, खुदा तल्ला है, वो क्या करते हैं अपने रूप के अनुसार में सूरत माने रूप जैसा ये बनाया। तो जो बाइबल मानने वाले हैं, जो कुरान मानने वाले हैं, या तो उसको माने नहीं तो निकाल करके रखते, उसको मानने चाहिए। मानते हैं, कहते हैं मानता हूं, तो ठीक है, ये भी तो वहां लिखा है, मानो। कहीं कहीं पर ऐसा है, हमारे मुस्लिम मजहब में जब जगत का प्रलय हो जाता है तो खुदा के यहां जाते हैं, वो विचार करता है, यदि किसी जगत का ब्रह्म का खुदा का ही और कोई रूप नहीं है, जो जाते हैं उनका रूप नहीं है, तो किसका विचार क्या विचार करेंगे शून्य का? इसलिए ऐसा कोई भी शास्त्र के किसी भी शास्त्र में किसी भी साहित्य में ऐसा नहीं है जो भगवान का रूप नहीं माना गया। दूसरी बात, एक आदमी ने एक शून्य कोई चीज कहीं पर रख दिया, शून्य को छोड़ दो, इमली का भी मिट्टी में डाल दिया और एक नीम का बीज दे दिया गंगा के किनारे ही और एक आम का पेड़ लगा दिया, एक अंगूर का पौधा लगा दिया और वही भी गंगा के पानी से, वही गंगा के किनारे की मिट्टी में उसको पानी दे रहा है, तो अलग अलग पौधे में कि एक ही पैदा होगा, एक ही पानी से सिंचाई, एक ही जमीन में दिया, तो आम के पेड़ के आम के गुठली से कैसा निकलेगा आम? कैसा होगा? मीठा। यदि मीठा आम होगा तो, और खट्टा यदि हुआ तो खट्टा ही होगा, उसमें जिस चीज की पोटेंसी है वैसा ही होगा। आम का बीज लगाया और कहा जैसे ये इमली का हो जाए, बबुल का कांटा का वृक्ष लगाया और कहेंगे ये आम का हो जाए, होगा तुम्हारे कहने से? तो जैसा बीज होगा वैसा ही उससे पौधा होता है। बीज समस्त विश्व के ब्रह्म है, भगवान है, अल्लाह खुदा है, है ना? तो उनसे ये जब जगत निकला तो उनमें रूप है कि नहीं है? नहीं है तो कहां से आएगा? जीरो कुछ रह जाए, शून्य को कहीं से दे दे, कुछ देंगे क्या तो उसे हो जाएगा? इसलिए हमारी ये कल्पना फ्रॉम नथिंग एवरीथिंग हैज कम आउट, ये गलत है, इलॉजिकल है, हमारे युक्ति के विरुद्ध है। देयर मस्ट बी समथिंग, समथिंग से नहीं, देयर मस्ट बी एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज पूर्ण, ये पूर्ण है, पूर्ण की कल्पना नहीं, ये वास्तविक से पूर्ण है, भगवान परिपूर्ण, उसमें सारे रूप हैं, सारे गुण हैं, इसलिए उनसे ये मनुष्य और जितने सब जितनी सृष्टि है उनसे निकलती है। यदि ब्रह्म में ये सब रूप नहीं है तो ये रूप कहां से आया? नहीं आ सकता। तो हम उनको निराकार क्यों कहते हैं? शास्त्रों में भी तो लिखा, वेदों में भी लिखा, क्यों लिखा गया? इसलिए कि तुम जिस स्थिति में हो तुम उनको देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। जैसे एक पानी ले लो, पानी का यदि रूप नहीं होता तो हम देखते पानी दिखता है कि नहीं? दिखता है। अच्छा, उसका रूप कैसा है? कैसा? वी कैन नॉट डिफाइन, हम लोग उसको व्यक्त नहीं कर सकते। कटोरी में रखिए, नदी के रूप में रखें, बड़े थाल में रखिए, झील के रूप में रखिए, जैसा रखेंगे उसका नाम वही हो जाता है, किंतु वास्तविक में वैसा नहीं, उसका कोई रूप है। उसे पूछेंगे गंध कैसा है? पानी में गंध नहीं होता, होता है, जरूर गंध होगा, किंतु यू कैन नॉट डिफाइन, आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते। जहां की मट्टी में जैसा गंध है वैसा उसमें गंध होगा। यमुना का पानी काला दिखता है, गंगा का पानी सफेद दिखता है, क्यों? जहां से वो निकली है धाराएं, वहां की धाराओं में वहां की मिट्टी का उसमें गुण आया है, इसलिए उसमें ऐसा ही टेस्ट है। मथुरा में जाइए, उसमें बोरिंग कराइए, आपको नमकीन पानी मिलेगा सब कुओं में। मथुरा की किन चीज प्रसिद्ध है? क्या चीज? पानी खारी, बोली गारी, और कांटों में कांटों की झाड़ियां मिलेंगी, ये तीन चीजें हैं। यदि जाएंगे उलझ जाएंगे, कपड़े फट जाएंगे, बढ़ने नहीं देंगे, कांटीले और बोली गारी, चौबे लोग कहें अरे राण के, गाली देंगे उनका, ऐसी गंदी गंदी गाली देते हैं। और पानी पानी कैसा? खारा। ये खारा क्यों हुआ? क्यों? पासी में वृंदावन में यमुना जी का पानी मीठा, उसके पास में कुएं भी मीठे। दिल्ली में खारा पानी निकलता है? नहीं ना, भाई क्या? तो ये खारापन सब जगह मीठा, कहीं खारा, कभी कुछ, कुछ कम कड़वा, कुछ अधिक मीठा, कभी हल्का, ये सब होता है। ये किस लिए? उस मट्टी के गुण के ऐसा होता है। पानी अपना एक है, उसका स्वरूप है, उसका कोई गुण भी है, टेस्ट भी है, किंतु वी कैन नॉट डिफाइन। जहाँ की मिट्टी में जैसा होता वैसा टेस्ट होता है, उसका रंग भी मट्टी के अनुसार में जहाँ का होता है। स्वांगहो का नाम सुना है ना, चीन की नदी, उसको पीली नदी कहते हैं। क्यों? पीले प्रदेश से होकर के मिट्टी से बहती है, उसका पानी इसलिए जब पानी को ही डिफाइन नहीं कर सकते, ये पानी का रूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसका टेस्ट क्या है, तो ब्रह्म का आप रूप कैसे निर्देश कर सकते हैं? किंतु है रूप जरूर। अच्छा, सरसों आप लोगों ने देखा होगा, सरसों में तेल नहीं दिखता, उसको घानी में देकर के पीसिए तो क्या होगा, तेल निकल आए। दूध में घी देखता है, नहीं दिखता, दूध को दही जमाइए और दही जमाने के बाद में मथिए तो एक बार मंथन ऐसे झट कर करके छोड़ दिए, घी निकलेगा, नहीं निकलेगा। बार बार उसको मंथन कीजिए और उसमें थोड़ा सा फिर पानी डाल दीजिए, मक्खन ऊपर में आ जाएगा, उसको लेकर के गर्म कर दीजिए थोड़ा सा, उसका और सब चीज एक हो जाएगा और घी उसमें से निकल आएगा। जो साधन करेगा, भक्ति का साधन करेगा, प्रेम का साधन करेगा, उसको तो वो दिखेंगे, आत्मा से दिखेंगे, शरीर से नहीं। आत्मा उनको देख सकता है, उनका शरीर ही चिन्मय है। मीरा को दिखे, उसके पति को नहीं देखे, अरे किसके साथ में गा रही है, रंग मर रहा, ये सब मचा रही है, होश नहीं उनको, कवाड़ तोड़ करके भीतर गया, कैसे नाच रही है, नहीं? तो मैं तो इनके साथ में नाच रही हूँ, ये बंसी बजा रहे हैं, मैं गा रहा हूँ, कौन है जरा दिखलाओ तो। खाट के नीचे देखा, उधर देखा, उधर देखा, कहीं भी नहीं, कहाँ छिपा दिया, अरे तो यही तो खड़ा है, नहीं दिखता, जरा सिर पर ऐसे हाथ रख दिया, देखा, अरे अद्भुत मूर्ति, लौट गया जमीन, मीराबाई जी के चरणों में वो झुक गया। जब जब उन्होंने कहा अब नहीं, अब तो चली, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस घर से छोड़ दिया। राणा रो तारा गया, मना तारा गया, फिर घर में नहीं लौटी। उनको देखा जा सकता है, किंतु भक्ति का नित्य चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयंती, जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम। प्रेम का नेत्र के गुरु जी उपेत, प्रेम के नेत्र में वो अन्यन प्रेम का लगा दें और तब वो सब सब जगह दिखेगा, कहाँ नहीं दिखेगा, इसलिए प्रयत्न से वो दिखेगा। हम और भी लाखों, जो एक ही नहीं लाखों युक्तियां, मैंने एक दिग्दर्शन कराया, एक दिग्दर्शन और कराऊं। वेदों में एक ऐसा उपाख्यान है, एक ऋषि थे, उनका नाम गौतम था, उनका लड़का उद्दालक, वो पढ़ा रहे थे, वो पढ़ता नहीं था, बड़ा जो है ढीक था, उन्होंने गुरुकुल में दे दिया। गुरु जी को कहा इसको शासन करके इसको पढ़ाएं, 25 वर्ष तक वहां पर पढ़ा, 25 वर्ष के बाद में वो लौटा घर, पिताजी ने पढ़ लिख करके आया तो हाँ, पढ़ लिख करके पिताजी आ गया। अच्छा ये तो बतला, जगत का संचालन करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, जगत का स्रष्टा, पालयिता, रक्षक, ये उसका आकार कोई है कि नहीं? कहे पिताजी ये तो आकार नहीं है, गुरु गृह में यही पढ़ा तो हमको तो पढ़ने से ऐसा ही मालूम पड़ा। ठीक, ऐसा करो, वो सिंधा नमक की ढेला है, सिंधा नमक उसको ले आओ। तो ये एक बड़ा ढेला ले आया, एक पीतल की कठौती में कहा ये पानी भर दे, पानी भर दे, उसको कहा इसमें डाल दे, हाथ से चलाओ तो जरा, कुछ से चलाने के बाद में उसमें गल गया, पानी में मिल गया। पर जैसे जो नमक का ढेला था वो हमको जो लौटाओ दो, तो खोजने लगा कहीं नहीं मिला, पर जरा खोजो तो अच्छी तरह से, पिताजी नहीं मिल रहा है, अब ये है नहीं, है नहीं, पाने की कोई उपाय है? कहे नहीं आप नहीं मिले। अच्छा ठहर, आप जलाओ, एक उस पर रख दो पर्सन पतीली, उसमें पानी डाल दो, डाल दिया, आप धीमी धीमी चलाओ, चलाने लग गया। थोड़ी देर के बाद में पानी उसका वेपर होकर के ऊपर उठ गया और उसमें शेर जम गया, एकत्र कर दिया, फिर वैसा का वैसा नमक। देखा ना, ऐसे ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म कृष्ण है। साधन के द्वारा मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बस एक रट रहे, राम राम नहीं कर सकता तो क्या करो, मरा मरा भी करो, और यदि साज हो तो बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, सरल रूप में मिल जाए। जितनी तीव्र उत्कंठा होगी और प्रेम से इस नाम को करेंगे उतने जल्दी मिलेंगे, ये गारंटी शास्त्र देते हैं, हम भी देते हैं। यदि कुछ दिन कर करके देखो, यदि नहीं मिलते हैं तो मैं इसके लिए उत्तरदायित्व रहूंगा, नित्यानंद प्रभु जी ने कहा। आप थोड़ा देर करके देखिए तो हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं, जरूर होगा। आप 10 दिन कीजिए, गारंटी है। और उसके बाद में 10 दिन के बाद में फिर कीजिए प्रेम से, अपने आप आपका प्रेम विकसित होने लगा, फिर कृष्ण दूर नहीं। यदि कृष्ण निराकार हैं, वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी के एक मदन मोहन है, वो कहते हैं कि मुझको भूख लगी है सनातन, जरा दो पत्थर का ही भूख मांगता है। उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास में कुछ नहीं है। अरे नमक तो ला, रोटी के साथ में रोटी देता है, सूखी रूखी माधोपुरी से ला करके हमारे कंठ में नीचे नहीं उतरता। कहते प्रभु आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, आज नमक मांग रहे हैं, कल मक्खन मांगेंगे, फिर मिश्री मांगेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा। मैं ऐसे ही एक अकिंचन निष्किंचन मैं बचना हूँ, घर में सब छोड़ करके अब इसके लिए मैं गैया पालूँ ना क्या करूँ। अरे मैं कर लूँगा तो ठीक है, ठीक है आप कर लीजिए। साथ ही साथ में एक नाव आ रही थी कर्तूर साहब की, कहाँ से आ रही थी, पंजाब से, मथुरा में उनको सामान बेचना था, उसकी नाव वहीं रेती में लग गई। देखा जी महात्मा बैठे हैं, महात्मा के पास आया सनातन जी के पास में, महात्मा जी मेरी नाव फंस गई तो मैं क्या करूँ, मैंने रुक दिया। नहीं प्रभु ऐसा हमको मत तरकाइए, आप कृपा कीजिए, आपकी कृपा से जरूर होगा, हमको ऐसा विश्वास। मैंने जाए ये मदना से कहा, मदना मैंने किसको, मदन मोहन सिंह, ये कर देगा। सचमुच में आकर के उनके चरणों में रोया, इतने में नौका खुल गई। बहुत प्रयत्न किया था, नौका नहीं खुटी और फंस दी गई, और जहां उनसे कहा प्रार्थना अपने आप निकल गई। कहा जे प्रभु मैं मथुरा जा रहा हूं, बेच करके जो लाभ होगा मूल अपने पास रख करके लाभ वाला जो है आपकी सेवा में लगाऊंगा, सुंदर एक मंदिर बनाऊंगा, सोने का मंदिर बनाऊंगा, ब्राह्मण पूजा के लिए रख देंगे, हजारों गायों रख देंगे, मक्खन और मिश्री के लिए सारी व्यवस्था, जमींदारी उसने खरीद करके व्यवस्था कर दूंगा। ये संकल्प करके वहां से आया, किसी को बतलाया नहीं, मथुरा में आया, जो सोच रहा था जिस भाव में माल बिकेगा उसे 10-20 गुना अधिक माल उसका बिका दिखा और काफी रुपया मिला। उसने पहले तो वो लगाया जो लाभ हुआ था, इसके बाद में मूल भी लगा दिया और सुंदर भव्य मंदिर उनके बनाए और सब प्रकार की व्यवस्था कर। ये मूर्ति है पत्थर की, वही मूर्ति चली गई फिर कहाँ, वहां से उनके लड़की के पास में, अभी वो मूर्ति कहाँ है, गोविंद जी राजा की रानी जयपुर की, सोच रही इतना मधुर रूप, आज यदि इनके नाक में छेद होता और कान में छेद होता मैं अपना नकबेसर जो हीरे रत्नों से बना है वो पहना देती और कान में अपनी बल्लियों को कुंडल को मैं पहना देती। देखा जाए नहीं, पुजारी से पूछा, पुजारी जी नहीं कोई किया, घर में गई सो गई, रात में वही नंगे मत वो गोविंद जी वहां पर पहुंच गए। अरे मेरी मैया ने जन्म लेते ही हमारे कान और नाक को छेद दिया था, छेदवा दिया था, अभी भी छिद है, जाओ देखो। तो सवेरा हुआ, उठी, अपने पति को साथ लिया, वहां पर गई, कहे पुजारी के ऊपर में मेरा विश्वास है, मैं खुद देखूं। देखा क्या, यहाँ पर छेद है और कान में भी छेद है, अपने कान के कुंडल लाखों करोड़ रुपयों के उसने फिर से शुद्ध कराया, बेसर को शुद्ध करा करके और अपने हाथों से उनको पहना। ये मूर्ति कैसी है, जड़ है, मूर्ति है, मूर्ति नहीं साक्षात, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं समझो, उनका आकार है। वो किस रूप में आते हैं, यदि आकार नहीं होता तो यशोदा के गर्भ से कैसे आए, कैसे आए, इतनी ब्रज की लीलाएं की, ये सब असत्य हैं। राम के रूप में लीला की, कितने कितने रूप है, लाखों रूप, लाखों भक्त लोग, ऐसा कोई भी समाज और कोई भी धर्म नहीं है। नानक जी किसके उपासक थे, राम और कृष्ण के, उनकी जितनी भी हमारे वाणियां जितनी हैं सब नीलों की ही बातें, कोई ही अंतर नहीं, समय हो गया, इसलिए सभी मिलकर के हम लोग बस हरे कृष्ण करें। और आज यहीं पर समाप्त मैं करता हूँ, फिर कल हम लोग यदि मैं ठीक रहा सोमनाथ जी के घर पर, वो कौन सा मोहल्ला, शालीमार बाग में हम लोग कल जाएंगे, वहीं पर सब मिलेंगे। और अभी एक खूनी सुंदर से महामंत्र का लगाएंगे, जिधर से खाएंगे उधर से। यो भगवान नाम जो है साधारण रूप में जो नहीं जानते हैं वो किसी रूप में भी भगवान का नाम करे, यदि पूरा ना करे केवल हरे कृष्ण कह दे, हरे ही कह दे तो भी कोई हर्ज नहीं,
फल उतना ही मिलना है।
नहीं उतना अब छोड़ दीजिए, उतना काम नहीं। एक विचार से मैं बतला रहा हूँ क्यों इसका कैसे होगा। एक कलि संसरण उपनिषद है, ये तो लाखों वर्षों का, उसकी जो प्राचीन लिपियां थी उसमें हरे कृष्ण, और उसकी भाषा में दिया गया है यह मंत्र इस रूप में काम, पहले हरे इसके बाद में कृष्ण, इसके बाद में हरे इसके बाद में कृष्ण, इसके बाद में हरे कृष्ण कृष्ण हरे, दूसरी लाइन में जब चलें तो उसमें पहले हरे इसके बाद में राम, हरे राम 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 हरे, ये उसी के नीचे ये सब दिया गया है। इसके बाद में एक ब्रह्मांड पुराण है उसमें भी हरे कृष्ण नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पहले हरे बोलो इसके बाद में कृष्ण बोलो, इस तरह से है। इसके अतिरिक्त में कुछ और आगम निगम है उनमें भी इसी तरह का हमने चयन करके कुछ दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले आए तो उन्होंने दक्षिण देश में प्रचार किया, बंगाल भर में प्रचार किया, इसके बाद में उनके परिकर लोग आए उन लोगों का भी प्रचार क्षेत्र उधर रहा। इधर आज से करीब 100 वर्ष पहले से ये गीता प्रस्थापित हुआ कलकत्ते में, और उन लोगों ने देखा कि राम और कृष्ण में ये कुछ अंतर दिखता है तो एक ही चीज है, राम कहो या श्याम कहो। रामचंद्र जी का जन्म आगे हुआ त्रेता में, इसके बाद में कृष्ण का हुआ, इसलिए पहले राम राम से आ, इसलिए गीता प्रश्न सबसे पहले उन्होंने हरे राम राम राम, इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि सभी भगवान नाम है। किंतु ये संप्रदाय यहाँ पर है, विचार संप्रदाय में एक विशेष संप्रदाय, उन लोगों में ये संप्रदाय में गुरु से ये मंत्र नहीं मिलता, वो ऐसे लिखते हैं और करते हैं जैसे अद्वैतवादी सन्यासी लोग होते हैं और दूसरे साधारण जो कहीं से भी दीक्षा लिया कि नहीं लिया, साधारण आदमी है वो गीता प्रेस की अधिकतर धार्मिक पुस्तकों को, मैं भी बचपन में उन्हीं से घर में आया, तो वो लोग देखते हैं कि रामचंद्र चेता जी जो है इसलिए इसको पहले कहना चाहिए, इसके बाद में ये इसमें तीन नाम है हरे हरि से और कृष्ण और, इसलिए इनमें करने से कोई भी हानि नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। अब हम विचार करते हैं कि कृष्ण और राम में पहले कौन हुए, पहले कृष्ण हुए कि राम हुए। अच्छा पहले राम को हमने मान लिया त्रेता जी, तो उसके पहले जो द्वापर जो आया था तो उसमें राम से पहले अब कृष्ण हो गए, और फिर जब उसका विचार करेंगे तो देखेंगे ऐसे उस द्वापर से पहले त्रेता में वो राम हुए हैं। ये तो साइक्लिक ऑर्डर से चलता है, सर्कल का कोई भी बिंदु अंतिम और प्रारंभिक भी हो सकता है, इसलिए इस काल गणना में से कुछ लाभ नहीं, मंत्र सब इसके ऊपर में आधारित नहीं होते, दोनों तत्व एक। इसमें एक विचारणीय ये प्रश्न है कि जो गुरु है दीक्षा में यह मंत्र देता है कि नहीं, तब तो वो ठीक है, ये लोग बिना लिए हुए ऐसे करते हैं, किंतु हम लोगों की संप्रदाय में हजारों वर्षों से ये गुरु मंत्र के रूप में ये देता है, चार पांच मंत्र हैं उसमें एक जरूर ये प्रधान महामंत्र के। हम लोगों के संप्रदाय में शास्त्रों के अनुसार में जैसा कोई विचार दिया गया उसके अनुसार में इसको लिया, एक व्यक्ति के राम और कृष्ण और हरि तीन उपास्य नहीं, एक ही तत्व होने पर भी लीला वैसी से जब हम उसमें बहुत सूक्ष्म से विचार करते हैं प्रवेश करते हैं, तब साधारण कानून एक जनरल के रूप में होता है, यदि मार दिया किसी ने किसी को जान से तो उसकी फांसी, किंतु नहीं होगा ऐसा, उसका मोटिव क्या था, मोटिव के ऊपर में चलते हैं, यदि मोटिव प्रमाणित हो गया जैसे यहाँ जिसने जाग बोल करके मारा था उसको मारने की नियत से हत्या करने की नियत से, यदि गोली नहीं भी लगी किंतु ये देखेंगे मोटिव उसका ऐसा है तो वो उसको दंड नहीं किया जाएगा। इस तरह से तत्वतः साधारण रूप में जनरल रूप में भगवान का नाम करना मुक्ति से हो जाएगी, संसारिक दुखों से निवृत्ति होकर के अनजान में भी यदि कोई राम कृष्ण इत्यादि कह दिया, हरे कृष्ण की तो बात ही क्या, हरे कृष्ण कहा तो जरूर मुक्ति हो जाएगी यदि इसका अभ्यास। किंतु इसमें उपास्य की ठीक नहीं, जैसे राम आपके उपास्य हैं, न कृष्ण है न हरि है, सीता के साथ में कभी कृष्ण को नहीं बैठाएंगे यद्यपि एक ही पक्ष है, यह रसाभास का लगता है, यह रस का दोष है। राम के साथ में राधा जी नहीं बैठे, कभी नहीं बैठे, यद्यपि सीता जी ही राधा जी हैं, राधा जी सीता हैं, राम और कृष्ण हैं, यह रस का तो वैशिष्ट होता है। इसलिए होता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसमें राधा जी भी पुरुषोत्तम होकर के मर्यादा होकर के सीता के रूप में प्रतिष्ठित है। राम जैसे कृष्ण जैसे रास कर सकते हैं, राम नहीं कर सकते, ये मर्यादा का भी उल्लंघन करके प्रेम की अधिक महिमा देते हैं कृष्ण लीला में। सीता जी को पैर में कांटा गड़ जाने पर भी राम अपने हाथ से जल निकालेंगे, नहीं सीता जी नहीं निकालेंगे, नहीं छूने देंगे। किंतु कृष्ण लीला में बिना किसी कारण से ही कृष्ण उनके चरण कमलों को अपने सिर पर भी ले सकते हैं। राम मर्यादा का भंग करके झूठ नहीं बोल सकते, और कृष्ण को देखते हैं ऐसा लगता है ये झूठ बोल करके अस्वस्थाना हतायती गजय इत्यादि कितने कितने प्रकार का, वहाँ पर प्रेम प्रधान है, यहाँ पर मर्यादा प्रधान, ये मर्यादा की डोरी में राम बंधे हैं और कृष्ण मर्यादा की डोरी में भी नहीं बंधे हैं, वो एकदम प्रेम से बंधे हैं। अब ये देखना है कि मर्यादा बड़ी है कि प्रेम बड़ा है, मर्यादा से कोटि गुण प्रेम बड़ा है। संसारिक लोगों के लिए जिनको इतना रस तत्व का और भगवत तत्व का अध्ययन नहीं है, वो मर्यादा की तरफ नहीं झुके, मर्यादा तरफ, किंतु मर्यादा रह करके क्या करी, यदि प्रीति ही नहीं रही, प्रेम ही नहीं रहा। इसलिए कृष्ण लीला में द्वादश रस माने जाते हैं, बारह शांत दस सख्य वात्सल्य और मधुर हस्त अद्भुत करुण रौद्र ध्यान विभक्त इत्यादि ये बारह रस। ये बारह रस में से राम में केवल अढ़ाई रस दिखलाए गए, उसी को प्रकाश करने के लिए जगत में आए, उसमें मर्यादा ये। अब ये तीन चौ का बारह होता है ना, राम में अढ़ाई को तीन ही लिख दिए क्योंकि वात्सल्य और सख्य का दोनों का आधार है, तो ये तीन ही रखिए, तीन चौ का बारह होता है, कृष्ण में बारह है, तो ये तृतीयांश या चतुर्थान तीन का ये हुआ राम में, और उनमें बारह रस। राम में बारह रस होने पर भी वो विकसित नहीं है, जैसे कि द्वितीया के चांद में चंद्र पूरा होने पर भी कला उसका प्रकाश में दो ही होता है, चंद्र से एक ही है किंतु पृथ्वी की छाया इत्यादि से उसके दो कलाओं का ही प्रकाश होता है, वैसे ही राम कृष्ण एक होने पर भी जब अवतरित होते हैं वो कृष्ण ही राम के रूप में, तो उनकी केवल अढ़ाई तीन कलाएं ही रहती हैं। अब यहाँ पर जब हम लेते हैं तो देखते हैं कि एक पुराण में लिखा है यदि विष्णु का सहस्त्र नाम लें, विष्णु सहस्त्र नाम का यदि पाठ करें तो सहस्त्र विष्णु के नाम हो गए, ये एक राम नाम के बराबर होगा। क्यों? राम में इतने गुण हैं, इतने प्रभाव हैं जो विष्णु से 1000 गुना हुआ है राम में, इसलिए विष्णु में जो गुण है विष्णु का नाम लेने से वही गुण और वही फल मिलेगा जो विष्णु तत्व में, और राम में जो गुण है, राम में जो शक्ति और सामर्थ्य है, राम का नाम लेने से वही राम का जितना गुण और जितनी सामर्थ्य और शक्ति थी उस शक्ति में आएगी, इसलिए 1000 बार विष्णु का नाम इज इक्वल टू एक राम। और जो मैंने तथ्य बतलाया रस के विचार से उसमें बतलाया गया त्रिरा वित्त तु जतफलम, अर्थात राम का तीन बार यदि नाम लोगे तो एक बार कृष्ण नाम के बराबर। क्यों? आप राम को सखा के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, आप भजन करके मर भी जाएंगे, राम का कोई सखा नहीं। लक्ष्मण जी उनके भाई हैं, भरत जी उनके भाई हैं, विभीषण जी उनके सखा हैं, सुग्रीव जी उनके सखा हैं, किंतु कोई भी उनके पलंग पर बैठ करके गलबहियां दे करके अपना जूठा उनको नहीं खिलाने का साहस करते। ये राम में प्रकाशित नहीं है, राम वही कृष्ण है, किंतु कृष्ण लीला में एक सुबल सिदाम सुबल मधुमंगल इत्यादि सभी जो आएंगे उनके पलंग पर बैठ जाएंगे, अरे सारे धूर्त क्या कर रहा है, और अपना जूठा खिलाएंगे खाएंगे हंसी करेंगे, उनके कंधे पर वो चढ़ेगा वो चढ़ेगा, इसलिए राम ने ये समझ, ये मर्यादा है।
ये तो लीला जो है भगवान की और राम की, ये एक अच्छा है। एक एस्पेक्ट है, मतलब एक फेस है सारी। लेकिन जब हम राम कहते हैं तो हम दशरथ का बेटा राम राम नहीं कहते।
तब आप समझिए जैसे आप भक्ति लाइन में आए नहीं
कहते हैं।
नहीं तो इसमें विचार है, जब ऐसा नहीं समझते हैं, लीला को उससे पृथक कर देंगे, शरीर से राम को पृथक कर देंगे, ये नास्तिक की बात है।
जब हम राम नाम लेते हैं, क्या हम दशरथ के बेटे राम का नाम लेते हैं कि जिस राम के अस्तित्व से दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा था, या
इसमें इस को समझिए, जैसे वो कृष्ण उनके प्रेम में वशीभूत होकर के वहाँ आए, उनके प्रभाव से दशरथ, ये आपका स्वतंत्र शास्त्रों का विचार में बदला
नहीं, बस छोटा सा आपका टाइम
उसी को बतला रहा हूँ, आप सुन लीजिए, इसके बाद में दृष्टि जल लीजिए। आज आप लोग तो न्याय प्रधान व्यक्ति हैं, इसलिए हमारा पूर्व पक्ष सुन लीजिए और इसके बाद में जजमेंट दीजिए। जैसे मैं आपका सुन लिया ना, इसका अच्छा विचार होगा, उसको एकदम विचार करके देखें, हमारे दृष्टिकोण से भी देखें, अपने दृष्टिकोण से देंगे, साधारण जनरल लोगों की। तो देखिए अब इसलिए राम में सख का प्रकाश, राम में मधुर का प्रकाश, एक साथ में वो दो स्त्री को भी नहीं रखते हैं, मर्यादा भी होता है उसकी, उस समय में उसी की यही किसी की जरूरत है। इसलिए सीता जी भी उनकी पत्नी है किंतु दासी, दास के भाव, घर से निकाल दिया चुपचाप, ये नहीं कहा जैसे आपने यह न्याय। इसलिए रूप में भी उनकी उपासना होगी तो ये संभव होता है, वात्सल्य रूप में, वात्सल्य रूप का आधा केवल, मैंने शास्त्रों का, हमारे ऋषियों का जो विचार है वो अपना विचार नहीं कर रहे। अब इस दृष्टि से राम का जो कृष्ण ही प्रकाशित हुए हैं, अपने तृतीय अंश को प्रकाश किया है राम के लिए, और कृष्ण को पूर्ण रूप में शांत दास सख और ये सख, इसलिए राम की अपेक्षा तीन बार राम कहने से एक कृष्ण नाम का फल होता है। दूसरी तरफ एक युक्ति ये देते हैं कि ये हरे और राम का क्या तात्पर्य है, हरे माने होता है जिसके उच्चारण करने से, जिस हरि का उच्चारण करने से जो हमारे जितने भी विपत्तियां आपत्तियां दुर्गुणी इत्यादि हमारा अज्ञान सबको हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है यह हरि, दूसरे और कोई नहीं है, कृष्ण ही है। उधर में राम शब्द का है, रमण शब्द से तात्पर्य होता है रमण प्रीति राम, जो जीव के समस्त जीवों में चेतन चेतन सर्वत्र वो रमण करते हैं, किंतु पूर्ण रूप से कृष्ण राम कभी भी राधा जी के साथ में रमण नहीं कर सकते, इसलिए राधा रमण अति राम वहाँ पर है। इसलिए यहाँ जो कृष्ण हरि हैं वही कृष्ण है, वही यहाँ पर राम है, तीनों एक ही है। एक व्यक्ति का दो उपास्य नहीं होगा, एक ही उपास्य, या तो कृष्ण है रहे या राम, क्योंकि यह रसगत ये दोष है, साधारण दृष्टि से यह दोष समझ में नहीं जाएगा, किंतु रस के विचार से इसमें दोष हो जाएगा। अब हरि जो हम लोग करते हैं हरे, वो भी हरि शब्द से नहीं लेते, जैसे वो ब्रह्मांड पुराण इत्यादि है, अग्नि पुराण है, उसमें से लोगों ने भी कुछ कमी आज से 500 वर्ष पहले ने दिया, यहाँ पर हरा शब्द से हरे है। कृष्ण इतने सुंदर हैं, मनोहारी हैं, किंतु अपने सुंदर रूपों से, मधुर गुणों से, अपने सौंदर्य से, प्रेममयी सेवा से कृष्ण के चित्त को जो हरण कर लेती है, उनका नाम है वो हलादनी शक्ति रूपी राधा, इसलिए हरा से ये हरे, अर्थात राधा और कृष्ण, और उधर हरे राम में हरे माने राधा, राम माने होता है रमण करना, राधा रमण गोविंद का ही नाम है, इसलिए यह जुगल जोड़ी के रूप में, शक्ति शक्ति माने एक ही के रूप में, इस रूप में हमारे संप्रदाय की धारणा है। अब आप सुख रूप से बीच विवेचन करके देखेंगे, आपको जहाँ तक उपयुक्त लगे उसको वो आएंगे, आगे पीछे करेंगे, कितने उसमें भाव नहीं आएगा, ये जो मैंने भाव कहा, आगे आप हरे राम करते हैं वो बिना कुछ भाव के करते हैं, उसमें कुछ लाभ होगा अनायासी, उससे मुक्ति इत्यादि की बात।
ये महामंत्र जो है जाप करता है या खाता है, पर वो हरे राम के शुरू कर देता है,
कम फल मिलेगा, कम फल में मैंने मुक्ति तब होगा, साइंटिफिक यही है उनके गुणों के अनुसार में और भावना की, जैसे किसी काम में भावना के ऊपर में जोड़ दिया जाता है। आपके हाथ से गोली चली, आपकी भावना नहीं थी कि उसको लग जाए, किंतु गोली लग गई, आपकी भावना नहीं मारने की थी, तो आपको उसके लिए दंड नहीं होगा। एक मिनट से आपकी तो भावना के ऊपर में निर्भर, हम लोगों की भक्ति जो लाइन है भावना के ऊपर में बनती है। हम ये नहीं देखते हैं कि वो हरे कृष्ण हरे राम कहा पीछे से उसमें हरे राम आ गया, हरे कृष्ण हरे राम हो गया, ये तो ठीक हो गया, उसमें कोई हक, किंतु वो भावना कहाँ से लाएंगे? जब हमने कहा जैसे ये हरे का राधा जी से तात्पर्य है और कृष्ण का वहाँ पर नंदनंदन से तात्पर्य है, द्वारकाधीश से भी तात्पर्य है, वो करेगा ही नहीं जब भावना होगी तो, क्योंकि वो गुरु परंपरा की धारा में आ रहा है, वो कर नहीं
सकता। परंपरा और संप्रदाय का,
हाँ संप्रदाय का नहीं, ये शास्त्रों का, शास्त्रों ने संप्रदाय का विभाग नहीं किया, ये भावना के ऊपर में ये सब प्रतिष्ठित है। यदि वो अपनी भावना से कुछ करता है कि तो उनमें सांप्रदायिक रूप में उनको मंत्र ही गुरु से नहीं मिलता और हम लोग में गुरु से मिलता है, ये यहाँ पर बात करते हैं, इसलिए वो बिना भावना का करते हैं और हम लोग भावना के साथ में युक्त होकर के। वो गुरु नहीं देगा बिना गौरी संप्रदाय का, ये समझ रखिए एकदम गारंटी मैं देकर देगा, दे नहीं सकता वो दूसरा, वो राम राम आय नमा वो दूसरा कुछ मंत्र, ये हरे राम वाला ये कभी दे नहीं दे, नहीं देखा, मैं गारंटी देखता हूँ। वो ऐसे ही कीर्तन करने के लिए जैसे कि राधा रमन हरि गोविंद जय कर रहे हैं, इसमें